ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है और विशेष स्वागत है हिज़ोलिनेस भक्ति माधुरी गोयल साईं महाराज जी का। हिज़ोलिनेस भक्ति माधुरी गोयल साईं महाराज की। सो दिस इज द ह्यूमिलिटी ऑफ महाराज दैट एवरी डे महाराज कम्स एंड सिट्स इन द भागवतम क्लास एंड सो हियर फ्रॉम एनी ऑफ योर डिवोटी लाइक मी। महाराज की विनम्रता है कि महाराज अभी भी इतने वरिष्ठ होते हुए भी हम जैसे कनिष्ठ भक्तों से सुनने के लिए इतने तत्पर हैं, तो वास्तव में ये महाराज की विनम्रता दिखाती है। और आज जैसे कि मोहिनी एकादशी है, तो एकादशी के पर्व पे हम लोग प्रभुपाद लीलामृत से पाठ करते हैं। श्रील प्रभुपाद लीलामृत हिज होलीनेस सत्स्वरूप गोस्वामी महाराज जी के द्वारा लिखित ये ग्रंथ है, जो कि प्रभुपाद जी की जीवनी के ऊपर है। तो आप में से काफ़ी भक्त आए होंगे जो कि आज दर्शन करना चाहते होंगे, लेकिन आज क्योंकि चंदन यात्रा चल रही है और एकादशी के उत्सव पे भगवान के देवे देवे पूरे चंदन का लेप होगा, तो दर्शन लगभग 9 बजे खुलेंगे। तो जो लोग दर्शन के लिए उत्सुक हैं उनका भी सौभाग्य है कि उनको आज प्रभुपाद जी के लीलामृत से सुनने को कुछ मिलेगा। तो कृपया करके सब्र बनाए रखिए और ध्यानपूर्वक इस ग्रंथ से सुनने का प्रयास कीजिए। एकादशी के दिन हमें अवसर मिलता है कि हम प्रभुपाद जी के बारे में सुने और प्रभुपाद के बारे में पढ़ें। और शुद्ध भक्त का गुणगान भगवान को बहुत प्रिय है। जब भगवान अपने भक्तों का गुणगान सुनते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में विशेष उनके सेनापति हैं, जो कि चैतन्य महाप्रभु के संदेश को पूरे विश्व भर में ले गए, पाश्चात्य देश तारिण्य। तो ये प्रसंग चल रहा है प्रकरण 45 और अध्याय का नाम है कृपया पुस्तकों का वितरण कीजिए, जाए बुक डिस्ट्रीब्यूशन की। और इस समय श्रील प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस में आ गए हैं और अप्रैल 11, 1973 की बात है, प्रभुपाद जी लॉस एंजलिस में हैं। उस समय लॉस एंजलिस में बहुत भारी संख्या में पुस्तक वितरण होता था, बहुत ही भारी संख्या में, उस समय के लिए जिसे कहते हैं कि अकल्पनीय, क्योंकि यहाँ पर अभी शुरू ही हुआ था पाश्चात्य देशों में पुस्तक वितरण, और लॉस एंजलिस में बहुत भारी मात्रा में पुस्तक वितरण होता था। और उस समय 2 प्रमुख पुस्तक वितरक थे लॉस एंजलिस में, कौन कौन थे? रामेश्वर प्रभु और त्रिपुरारी प्रभु। तो इन दोनों ने नए नए रिकॉर्ड सेट किए। मेरी महाराज यू आर ऑल्सो देयर इन लॉस एंजलिस इन 1973। तो महाराज जी भी उस समय लॉस एंजलिस में ही थे 1973 में। तो ये हमारा सौभाग्य है, महाराज भी बीच में टिप्पणी करेंगे कि उस समय क्या सीन चल रहा है। तो आपसे कल्पना की जा रही है कि अब आप सबके सब पंजाबी बाग में नहीं हैं, अमेरिका के लॉस एंजलिस में हैं, ठीक है? और बैक टू पास्ट जाना पड़ेगा आपको आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व, 41 साल पहले। आज से 41 साल पहले, आप में से कहीं लोग पैदा भी नहीं हुएंगे, लेकिन ठीक है, हो सकता है उस जन्म में हों आप। तो रिग्रेशन पीछे जाइए और 1973 में पहुंच जाएंगे सब, और देखेंगे कि इस्कॉन नया नया बना है, भक्तों में बहुत उत्साह है और प्रभुपाद जी लॉस एंजलिस में आए हैं। तो उस समय प्रभुपाद को जब एयरपोर्ट पर रिसीव करने जाते थे, भक्त बहुत भारी संख्या में जाते थे और बड़े उत्साह से कीर्तन करते हुए। आजकल तो हम भारत में भी जाते हैं कीर्तन करते हुए, रेलवे स्टेशन पे एयरपोर्ट पे पुलिस मना कर देती है ना। उस समय वहाँ देखिए लॉस एंजलिस में भक्त लोग उत्साहपूर्वक जाते थे प्रभुपाद को रिसीव करने के लिए और बहुत जोरदार कीर्तन करते थे। तो प्रभुपाद जी पिछली बारी आपको किसी को याद है कहाँ पे छोड़ा गया था, कितने भक्त पिछली एकादशी में उपस्थित थे, किसको याद है पिछली एकादशी में कहाँ तक पाठ हुआ था? जो बताएगा उसको विशेष पुरस्कार मिलेगा, आगे से दर्शन कराएंगे। बताइए किसको, किसी को याद है? गैस बताएं कुछ कि प्रभुपाद आ चुके हैं लॉस एंजलिस में। तो पीछे से कुछ पढ़ना शुरू करते हैं, पिछली बार आप लोगों ने पढ़ा होगा। प्रभुपाद को लॉस एंजलिस का यह बगीचा इतना पसंद था कि इस तरह एक बगीचा उन्होंने मायापुर मुख्यालय में भी लगवाने का निर्णय लिया। जहाँ तक मायापुर के भवन का संबंध है, मेरा सुझाव है कि आप छत पर एक वाटिका लगाएं, भवन की छत पर 6 इंच मिट्टी डाल दें, फिर उस पर बहुत से तुलसी के बिरवे या अन्य सुंदर झाड़ियाँ लगाएं। मुझे वाटिका बहुत पसंद है, ठीक जैसे लॉस एंजलिस मंदिर में उन्होंने यहाँ मेरे लिए बहुत सुंदर वाटिका लगा दी है और मैं उसमें प्रतिदिन संध्या समय बैठता हूँ। इसलिए आप मायापुर में भी एक उत्तम कोटि का बगीचा लगाएं। प्रभुपाद जी को बगीचा बहुत पसंद है। रात में लगभग 10 बजे प्रभुपाद सामान्यतः अपने सोने के कमरे में जाते थे और लेट जाते थे। उनका सेवक शुद्ध कीर्ति उनके पैरों की मालिश करता था, तब प्रभुपाद अपने नेत्र बंद कर लेते थे। इस बीच रामेश्वर नीचे की सीढ़ी पर बैठा प्रतीक्षा करता रहता था कि उनका सचिव या सेवक प्रभुपाद का कोई आदेश लेकर आ सकता है। तो रामेश्वर जी अब बता रहे हैं, मैं श्री प्रभुपाद से इतना डरता था कि उनके कमरे में नहीं जाता था, अतः निचली सीढ़ी पर बैठा उनके आदेश की प्रतीक्षा करता रहता था। मैं वहां बैठा रहता और उनके केवल एक शब्द की प्रतीक्षा करता रहता। श्रील प्रभुपाद प्राय कुछ कहते रहते और वह मुझ तक पहुंचा दिया जाता था। तब प्रतिदिन सवेरे संकीर्तन दल के लोग मुझे घेर लेते थे और पूछते थे उन्होंने क्या कहा। वे उनके अमृत तुल्य वचनों की मुझसे याचना करते थे। यह बहुत गहन अनुभूति थी। हमें लगता कि हम प्रभुपाद से सीधे विशेष संबंध से जुड़े हैं। तो आप समझ पा रहे हैं उस सीन को, दृश्य को समझ पा रहे हैं। प्रभुपाद अपने कमरे में होते थे, शुद्ध कीर्ति प्रभु जो उनके सेक्रेटरी थे वो प्रभुपाद के चरणों की मालिश करते थे। रामेश्वर वो कहाँ बैठते थे? नीचे सीढ़ी पे। प्रभुपाद के सामने जाते उनको क्यों नहीं जाते थे वो? उनको बहुत डर लगता था। तो रामेश्वर जी नीचे बैठते थे, किस चीज़ की प्रतीक्षा करते थे? आपसे प्रश्न पूछते रहेंगे ताकि आप बिल्कुल अलर्ट रहें, है ना? किस चीज़ की प्रतीक्षा करते थे रामेश्वर प्रभु? प्रभुपाद का कोई आदेश, क्योंकि प्रभुपाद जब आगे जाके पढ़ेंगे, प्रभुपाद जब मॉलिश करवाते थे तो कुछ बोलते थे पुस्तक वितरण के बारे में या पुस्तक वितरण को इनकरेज करने के लिए। तो एक शब्द सुनने को मिल जाए तो उनके सेक्रेटरी आके नीचे बताते थे, तो वो जो शब्द संभाल के रखते थे। और अगले दिन क्या करते थे रामेश्वर प्रभु? जब के समय सारे जो बुक डिस्ट्रीब्यूटर इकट्ठे होते थे, हाँ क्या बताया प्रभुपाद ने, कल क्या कहा, और उसको शेयर करते थे। तो वो इतने से ही उनको लगता था कि प्रभुपाद से उनका व्यक्तिगत विशेष संबंध है। एक एक शब्द सुनने के लिए आतुर होते थे। प्रभुपाद के एक एक शब्द अमृत के समान लगते थे। प्रभुपाद के कमरे के बाहर प्रतीक्षा करते हुए मुझे दिव्य आनंद की अनुभूति होती थी। ऐसा नहीं है प्रतीक्षा करें तो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, जल्दी करो भैया मॉलिश, मेरे को सोना है, रात सुबह का उठा हुआ हूँ, है ना, कुछ कर तो रहा नहीं, खाली बैठा हूँ यहाँ पे। अपनी इच्छा से वो बैठते थे, बस प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब शुद्ध कृति प्रभु आएंगे, प्रभु के बारे में कुछ बताएंगे। इसमें दिव्य आनंद की अनुभूति हो रही है, यह सोचकर कि हमें गुरु महाराज के प्रति अपने शुद्ध प्रेम की भेंट स्वरूप पुस्तकों का वितरण कर रहे हैं। हम वक्त पहली बार हवाई अड्डे जा रहे थे। लॉस एंजलिस के भक्तों के अतिरिक्त आंदोलन में से अन्य किसी को हवाई अड्डे पर जाने का अवसर नहीं मिला था, इसलिए यह एक विशेष बात थी। बड़ी पुस्तकों की इतनी संख्या में बिक्री कोई नहीं कर रहा था जितनी हम कर रहे थे। पूरे विश्व में जितनी बिग बुक्स, बड़ी किताबें थी, उनकी बिक्री सबसे ज्यादा लॉस एंजलिस में हो रही थी। एक समय जब श्री प्रभुपाद ने मेरे प्रतिदिन की संकीर्तन रिपोर्टों में से एक रिपोर्ट देखी तो उन्होंने पूछा, यह रामेश्वर कौन है? जैसे भक्ति सिद्धांत सरठ ठाकुर महाराज कहते हैं, इतनी सेवा करो कि स्वयं भगवान आपको देखने आए। इसी ढंग से कई भक्तों को ये लगता है गुरु हमें जानते हैं कि नहीं जानते हैं, पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं, गुरु के इतने शिष्य हैं तो गुरु हमें पहचान जाए, इसके लिए क्या करना होगा, ऐसी सेवा करें कि गुरु प्रसन्न हो जाए। तो इतनी सुंदर रिपोर्ट आती थी तो प्रभुपाद को पूछना ही पड़ा, ये रामेश्वर कौन है, इतनी किताबें बांट रहे हैं। दिन प्रतिदिन श्रील प्रभुपाद उन भावना भावित रिपोर्टों को देखते थे। वो रिपोर्ट खाली ऐसे नहीं होते थे, फिगर्स नहीं होती थी, क्या रिपोर्ट थी वो? भावना भावित, है ना, कॉन्शियस थी उसमें, पूरे भावना थी, जिनमें हॉल में प्रकाशित चैतन्य चरितामृत के आदि लीला से अमृत तुल्य उदाहरण भरे होते थे। उन्होंने अनुभव किया कि ये शिष्य भावना भावित हैं। अतः उन्होंने पूछा, ये कौन है? जो कुशल आध्यात्मिक गुरु होते हैं वो रिपोर्ट देखकर ही समझ जाते हैं कि शिष्य की क्या भावना है, आंकड़े बता देते हैं और कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा, ये कौन है? उन्हें पता चल गया था कि हम संकीर्तन से प्रेम करते हैं, है ना, फलम परिचयत। कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं लिखी प्रभुपाद को, आई लव यू प्रभुपाद, यू आर माई सोल प्रभुपाद, मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकता प्रभुपाद, जब से आप मेरे जीवन में आए हो मैं बिल्कुल बदल गया प्रभुपाद, ये सब बड़ी बड़ी बातें नहीं लिखी, केवल स्कोर्स लिखे हैं बस। और उसे मालूम चल गया प्रभुपाद को कि ये लोग संकीर्तन से प्रेम करते हैं। हम पर यह कोई कृत्रिम बोझ नहीं था, कोई बोझा समझ के नहीं बांट रहे थे, कहां फंसा दिया, हाँ, या फिर हम संघर्ष कर रहे थे, ऐसा भी नहीं कि हम बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। उन्हें ज्ञात हो गया कि हमें कोई संघर्ष नहीं करना पड़ रहा था, ये कौतुक आनंद तथा भाव विभोरता जैसी चीज थी, सबको बहुत भाव विभोर होकर पुस्तक वितरण करते थे। हमारे आंदोलन का पूरा दर्शन उसमें निहित था। पुस्तक वितरण के अंदर रामेश्वर प्रभु कह रहे हैं हमारे पूरे गोड़िया वैष्णव आंदोलन का सिद्धांत निहित है। कैसे? पुस्तक वितरण के अंदर पूरा गोड़िया वैष्णव का सिद्धांत निहित है, जीवे दया और प्रीचिंग इज द एसेंस, और पुस्तक वितरण के अंदर पूरा सिद्धांत निहित है। कैसे वो बता रहे हैं, हम चैतन्य चैतन्यमृत के दर्शन में अपने आप को पूरी तरह ढाल रहे थे। ये जो सिद्धांत है चैतन्य चैतन्यमृत में, और इसके दर्शन के अनुसार ही हम अपने जीवन को ढाल रहे थे। जिसे भगवान चैतन्य अपने विश्वस्त पार्षदों के संग भगवत प्रेम का प्रसार करने के आविर्भूत हुए थे, और उन्होंने कभी यह भेदभाव नहीं किया कि कौन योग्य प्रश्नार्थी है और कौन अयोग्य है। यानी कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम बांटने आए हैं तो ये नहीं देख रहे कौन योग्य है कौन अयोग्य है, सबको बांट रहे हैं। और जब हम पुस्तक वितरण कर रहे हैं तो हम क्या बांट रहे हैं, कृष्ण प्रेम बांट रहे हैं, और ये नहीं देख रहे कौन योग्य है कौन अयोग्य है, सबको बांट रहे हैं, है ना, सबको दे रहे हैं हम। ठीक है, ठीक यही श्लोक हमें अपने नित्य प्रति के पत्र में समाविष्ट कर रहे थे। हमारी चित्रवृत्ति यही थी और प्रभुपाद को इससे प्रेम था। आगे बताया जा रहा है श्रुतकीर्ति के दृष्टिकोण से, श्रुतकीर्ति प्रभु कौन थे, उनके सेक्रेटरी के दृष्टिकोण से संध्याकालीन मालिश का समय विशेष समय होता था ना? हर एक भक्ति अपनी रियलाइजेशन है। अब श्रुतकीर्ति प्रभु कहते हैं कि संध्याकालीन जब मॉलिश का समय करने का होता था बड़ा विशेष समय होता था, क्योंकि उस समय श्रील प्रभुपाद दिन भर के प्रबंधनात्मक कार्यों के भार से मुक्त होते थे, सारी मैनेजमेंट से मुक्त हो गए। श्रुतकीर्ति वाटिका से रात में खिलने वाले बहुत सारे चमेली के फूल लाता था। चमेली के फूल जो बगीचे में होते थे वो खिले रहे थे, लाते थे, और मालिश के समय प्रभुपाद सुगंधित फूलों को अपनी नासिका के पास रख लेते थे। उस समय वे कृष्ण पुस्तक के वाचन के समय से भी अधिक शांत और आराम में होते थे। श्रुतकीर्ति प्रभु चरणों की मालिश कर रहे हैं, और देखिए भावना देखिए, गुरु को प्रसन्न करने के लिए वाटिका से चमेली के फूल लेके आते थे, प्रभुपाद चमेली के फूलों की महक को सूंघते थे, और श्रुतकीर्ति प्रभु उनकी मालिश कर रहे हैं, प्रभुपाद बहुत ही रिलैक्स्ड दिखाई देते थे। दिन भर कड़े परिश्रम के बाद उनके पास कोई काम नहीं होता था, ऐसा लग रहा उस समय केवल श्रुतकीर्ति और कोई काम नहीं होता था, रिलैक्स। यद्यपि केवल 3 घंटे के विश्राम के बाद ही उन्हें फिर उठ जाना होता था, यानी अब रिलैक्स करेंगे आराम से, हम लोग जैसे घोड़े बेच के सोते हैं ऐसे नहीं, बस 3 घंटे के बाद फिर उठ जाना है। किंतु इस समय वे आराम से लेटे होते थे और मंद स्वर में जप करते हुए विचारों में डूबे रहते थे। ये भी एक एक्सपर्टीज है, रिलैक्स करना भी एक्सपर्टीज है। प्रभुपाद कहते थे इट रिक्वायर्स इंटेलिजेंस टू रिलैक्स। एक बुद्धिमान व्यक्ति ही ढंग से सो सकता है, इसका रिवर्स सत्य नहीं है कि जो ढंग से सोते हैं वो बुद्धिमान है, लेकिन जो ढंग से सो सकता है इसका मतलब वो बुद्धिमान है। प्रभुपाद के पास आप सोचिए कितनी चिंताएं होती होंगी, कितनी चिंताएं। ये आंदोलन अभी शुरू हो रहा था, नए नए भक्त जुड़ रहे थे, बिल्कुल पाश्चात्य देशों के अलग संस्कृति के लोग, इतना मैनेजमेंट, लेकिन प्रभुपाद रिलैक्स कर रहे हैं, है ना। और 3 घंटे बाद उठना है, हमें मालूम है इतना थकावट के बाद 3 घंटे बाद फिर उठना, हमें नींद नहीं आएगी, क्या यार 3 घंटे बाद उठना है, क्या फायदा हुआ, ये भी कोई जीवन है, सोने को भी नहीं मिलता है ना, आज फिर उठना पड़ेगा। रोज का यही शेड्यूल है, यानी कि एक दिन चलो मेहनत कर ली, रोज का यही शेड्यूल, और विश्व के किसी भी हिस्से में यही शेड्यूल, कहीं भी जाए प्रभुपाद यही उनके दिनचर्या होते थे। आम व्यक्ति जब जाता है एक देश से दूसरे देश में, उसको जेट लैग बोलते हैं, 8 घंटे का डिफरेंस हो गया, 10 घंटे का डिफरेंस हो गया, और जो लोग ऐसा ट्रेवल करते हैं उनको मालूम है एक एक दो दो दिन तो ऐसे निकल जाता है उस टाइम जोन में आने के लिए, अपनी बॉडी को एडजस्ट करने के लिए। नहीं प्रभुपाद जहां उतरते थे वहीं सीधा मॉर्निंग वॉक शुरू, जपा शुरू है ना, जिसे बोलते हैं त्रिगुणातीत है ना, रिलैक्स। अब बिल्कुल रिलैक्स कर रहे हैं, जैसे कुछ, जैसे वो कुछ पूरे दिन भर में कुछ किया ही ना हो, इतना रिलैक्स है, और आराम से उनको 3 घंटे बाद फिर उठना भी है, और मंद स्वर से जप करते हुए विचारों में डूबे हुए हैं। किसी किसी संध्या वेला में वे मालिश कराने में देर कर देते थे और माला फेरते हुए अपने सोने के कमरे में टहलते रहते थे अथवा बिस्तर पर बैठकर जप करते रहते थे, किंतु अधिकतर रात में वे पीठ के बल लेट जाते थे और शुद्ध कीर्ति उनके पैरों की मालिश करता था। यदि कभी वे अपने सेवक से बात भी करते थे तो इस्कॉन की व्यवस्था के संबंध में नहीं होते थे, कोई मैनेजमेंट की बात नहीं, ठीक है। फिर क्या करते थे, वे दीवार पे टंगा हुआ कोई चित्र देखते और कहते कृष्ण कितने सुंदर हैं, कृष्ण की ओर लोग आकृष्ट क्यों नहीं होते, या कभी कभी वे अपने बचपन की बातें करते या इस तरह अन्य अनौपचारिक बातें करते, इनफॉर्मल टॉक करते थे या भगवान की सुंदरता का वर्णन करते, किंतु वो आराम की इस वेला में भी संकीर्तन के परिणामों के बारे में सुनना उन्हें अच्छा लगता। संकीर्तन के एक अलग स्टेटस था, संकीर्तन के स्कोर, पुस्तक वितरण का स्कोर सुनना आराम करते हुए भी उनको बहुत अच्छा लगता था, इसलिए कभी कभी वे रामेश्वर की प्रतिदिन की रिपोर्ट पढ़ने लगते या कृष्णा भावनामृत आंदोलन के प्रचार के बारे में कुछ कहने लगते। एक दिन रात में रामेश्वर के संकीर्तन की भावना भावित रिपोर्ट पढ़ने के बाद प्रभुपाद इतने द्रवित हो गए कि उन्होंने रिपोर्ट के पृष्ठ भाग पर ही एक संदेश लिख डाला। इतनी अच्छी रिपोर्ट थी कि प्रभुपाद का हृदय पिघल गया और उन्होंने उस रिपोर्ट के पीछे कुछ लिख डाला। 20 अप्रैल 1973 की तारीख डालते हुए उन्होंने लिखा, मेरे प्रिय बालकों और बालिकाओं, भगवान कृष्ण के चरण कमलों की महिमा का प्रसार करने के लिए तुम लोग कितना कड़ा परिश्रम कर रहे हो, मेरे गुरु महाराज तुम सब पर बहुत प्रसन्न होंगे, निश्चय ही मेरी अपेक्षा हजारों बार अधिक मेरे गुरु महाराज तुम्हें आशीष देंगे और इससे मुझे संतोष ही होगा, सभी एकत्रित भक्त यशस्वी हो, ऑल ग्लोरीज टू दी असेंबल्ड डिवोटीज, एसी भक्तिवेदांत स्वामी। पुनश्च रिमाइंडर, प्रत्येक भक्त को यथा संभव शीघ्र संगीतन आंदोलन में जाना चाहिए। प्रभुपाद जी ने रिपोर्ट के पीछे ये लिख दिया, ठीक है। क्या डेट थी, 1973। प्रभुपाद ने क्या लिखा, इसमें कौन प्रसन्न होंगे, भक्तिसिद्धांत ठाकुर महाराज प्रसन्न होंगे, और उन्होंने लिखा मुझसे हजारों गुना ज्यादा क्या करेंगे भक्तिसिद्धांत महाराज, आशीष देंगे और इससे मैं संतुष्ट होगा, है ना। आगे देखिए अब क्या होता है, सीढ़ी के नीचे चुपचाप बैठे रामेश्वर के मन में यह संकोच भले ही हो रहा हो कि प्रभुपाद ने उसे रंच मात्र भी मान्यता मिलती है या नहीं, किंतु जब उसे उनके हस्तलेख के रूप में सर्वोत्तम पुरस्कार प्राप्त हुआ तो अपने इस सौभाग्य में जो भी भक्त तब जग रहे थे उन्हें सहभागी बनाने के लिए वह चिल्लाता हुआ तेजी से भाग पड़ा। वो तो चुपचाप बैठा हुआ था, और देखिए जब वो नीचे प्रतीक्षा करते थे तो रामेश्वर प्रभु ये नहीं कहते कि हाय प्रभुपाद मुझे बुला लें, मुझे शाबाशी दें, मुझे कुछ मान्यता दें, मुझे रिकग्नाइज करें, है ना, ये भावना नहीं होती थी। प्रभुपाद को केवल इम्प्रेस करने के लिए नहीं बैठते थे, है ना, जस्ट बैठे रहते थे कि बस कुछ शब्द सुनने को मिल जाए प्रभुपाद की वाणी से। और उस दिन तो क्या हुआ, चिट्ठी मिल गई पूरी, और चिट्ठी देखी तो वेलकम का वाह, चिल्लाते हुए गए, शायद कोई जग रहा हो इस समय, सबको बताऊंगा। त्रिपुरारी क्या कह रहे हैं उनके साथ के दूसरे पुस्तक वितरक, प्रतिदिन सवेरे की मंगल आरती के बाद एक छोटा सा दल मंदिर के द्वार के आसपास इकट्ठा हो जाता था, है ना। क्यों होता था? क्योंकि मंदिर में प्रातःकालीन जप के समय बोलना वर्जित था, बोलना अलाउड नहीं है टेम्पल हॉल में। अतः रामेश्वर द्वार पर खड़े खड़े जप कर रहा था और उसने हमें अपने पास बुलाया और द्वार पे भक्तों का एक समूह जमा हो गया। उसने प्रभुपाद की टिप्पणी दिखाई, देखो देखो क्या है, सब देख रहे होंगे, इकट्ठे होकर दिखाओ, कितना सबको आनंद मिल रहा होगा। कुछ अन्य भक्त यह देखकर कि हम जप के समय बात कर रहे हैं अधीर हो उठे, क्या हो रहा है, सब क्या भीड़ क्यों लगा दी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण, अरे क्या हो रहा है यार, इंपेशेंट हो गए, क्या हो रहा है। उन्हें लगा कि हम बाधक हो रहे हैं, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं हमें, या हम अपनी सेवा अथवा जप में दचित नहीं है, ये कोई तरीका है जप के समय बात कर रहे हैं, सबको ऐसा लग रहा था। हाँ, किंतु वास्तव में हम संकीर्तन के विषय में सोचने में तन्मयता से निमग्न थे और जब हमने पुनः जब आरंभ किया तो प्रभुपाद को प्रसन्न करने की अभिलाषा के साथ हम बाहर जाकर संकीर्तन में लग गए। तो देखिए कितना भक्तों को रोमांच होता था प्रभुपाद से कुछ उत्साहवर्धक शब्द सुनकर, हे प्रभुपाद ने उत्साहवर्धक अपना नोट लिखा तो भक्त लोक में एकदम खलबली मच जाती थी, है ना। प्रभुपाद के ये शब्द कि प्रत्येक भक्त को जितना शीघ्र हो सके संकीर्तन जन में जाना चाहिए, अन्य मंदिरों में भी पहुंच गए। और यद्यपि श्रील प्रभुपाद ने शीघ्र ही भारत के लिए लॉस एंजलिस से प्रस्थान कर दिया, किंतु उनका संदेश वहां बना रहा और भक्तों के विश्वास को प्रगाढ़ बनाता रहा। प्रभुपाद जी ने यह संदेश दिया था, प्रत्येक भक्त को यथा संभव शीघ्र संकीर्तन आंदोलन में जाना चाहिए। उस समय इस्कॉन के प्रारंभिक वर्षों में मुख्यतः प्रत्येक भक्त की यही सेवा होती थी, जैसे ही ज्वाइन किए तुरंत पुस्तक वितरण, संकीर्तन दल में जाओ तुरंत। तो प्रभुपाद का ये आदेश है और ये पूरे विश्व भर में फैल गया कि प्रत्येक भक्त को जितना शीघ्र हो सके संकीर्तन दल में जाना चाहिए। और प्रभुपाद लॉस एंजलिस से कहाँ गए, भारत में 1973 में। 1973 ईस्वी की गर्मियों में भक्तों ने देखा कि संगीत गोष्ठियों में वे कुछ ही घंटों में कृष्ण पुस्तक की सैकड़ों प्रतियां वितरित कर सकते थे। संगीत गोष्ठी मीन्स म्यूजिक कंसर्ट, है ना, म्यूजिकल कंसर्ट होते थे जैसे वहां पे लॉस एंजलिस में। तो वहां पे भक्त लोग गर्मियों में कुछ ही घंटों में सैकड़ों कृष्णा पुस्तक बांट लेते थे। ये कृष्णा पुस्तक जो अब पेपर बैग में जॉर्ज हैरिसन की प्रस्तावना के साथ उपलब्ध थी, युवकों के लिए विशेष आकर्षक सिद्ध हो रही थी। आपने देखा ना कृष्ण पुस्तक में प्रस्तावना है जॉर्ज हैरिसन की, और ये तो जितने भी यंगस्टर्स होंगे उनको दिखाते होंगे, सी जॉर्ज हैरिसन ने रिटन दिस। तो जॉर्ज हैरिसन का नाम देख के जो यूथ थे वहां के यंगस्टर थे बड़े आकर्षित हो जाते थे। जुलाई में रामेश्वर ने प्रभुपाद को यह बताते हुए लंदन लिखा कि लॉस एंजलिस मंदिर प्रति सप्ताह 2000 पुस्तकें वितरित कर रहा है। अरे वो बहुत बड़ी बात है उस समय के लिए, एक वीक में 2000 कृष्णा पुस्तक, 1-to-1, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं होती, सीधा एक एक करके। और एक संगीत गोष्ठी में भक्तों ने 2 घंटे में 600 पुस्तक विस्तृत कर दे, 2 घंटे में 600 महाबिग बुक्स, क्या करते होंगे। लॉस एंजलिस के भक्तों ने तय किया कि त्रिपुरारी कुछ अन्य प्रमुख संकीर्तनकर्ताओं के साथ दूसरे मंदिर में जाकर अनुभवों का आदान प्रदान करें। देखिए कृष्ण कैसे बुद्धि देते हैं कि हम लोग इतनी सफलता से 2-2 घंटे में 600 पुस्तकें बांट रहे हैं, ये जो तकनीक हमारे पास ही नहीं रहनी चाहिए, दूसरे मंदिरों में जाकर भी इसको शेयर करें, सेमिनार्स करें, जाके इसे आजकल होते हैं। रामेश्वर ने प्रभुपाद को लिखा, श्री श्री रुक्मणी द्वारकाधीश लॉस एंजलिस मंदिर के अर्च विग्रह की कृपा है कि हम अन्य केंद्रों में इतने भक्त भेज सके, यह न्यू द्वारका का असली ऐश्वर्य है। श्रील प्रभुपाद ने इसका उत्तर 3 अगस्त को भेजा, इसमें संदेह नहीं कि पुस्तक वितरण हमारा सर्व प्रमुख कार्य है, मंदिर खाने और सोने के लिए नहीं है, अपितु ऐसा स्थान है जहां से हम अपने सैनिकों को माया से लड़ने के लिए भेजते हैं। माया से युद्ध करने का अर्थ यह है कि बद्ध जीवों की गोद में लाखों पुस्तकें डाली जाएं, जिस तरह युद्ध में आकाश से बम बरसते हैं उसी तरह धड़ 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 थाम थाम कर गए। मुझे तुम लोगों का यह कार्यक्रम भी अच्छा लगता है जिससे तुम अपने श्रेष्ठतम व्यक्तियों को दूसरों को शिक्षित करने के लिए भेजते हो। अन्य लोगों को शिक्षा देना ही वास्तव में कृष्ण भानामृत आंदोलन को आगे बढ़ाना है। कितनी महत्वपूर्ण बात प्रभुपाद ने लिखी है, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। अन्य लोगों को शिक्षा देकर ही हम कृष्ण भानामृत आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं। इस कार्यक्रम को चलाते रहो जिससे भविष्य में हमारे आंदोलन का प्रत्येक व्यक्ति पुस्तक वितरण की कला जान जाए। यानी कि हम में से हर एक किसी को पुस्तक वितरण में एक्सपर्ट होना चाहिए। कितने वक्त बनना चाहेंगे पुस्तक वितरण की कला? प्रभुपाद जी देख रहे हैं तो ठीक है, अभी शीघ्र ही आप लोगों के लिए फिर सेमिनार करेंगे पुस्तक वितरण के लिए, है ना। और सबको, और ये कला बैठे बैठे नहीं सीखी जाएगी। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? क्या करना पड़ेगा? संकीर्तन में भाग लेना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा, पुस्तक वितरण करनी पड़ेगी। प्रभुपाद की इच्छा है इस कार्यक्रम को चलाते रहो जिससे भविष्य में हमारे आंदोलन का प्रत्येक व्यक्ति पुस्तक वितरण की कला जान जाए। मैं इसके लिए अपनी स्वीकृति प्रदान करता हूं। जय श्री प्रभुपाद की। एक महिला का पत्र, अब पुस्तक वितरण इतना बढ़ गया तो एक महिला का पत्र आया, एक महिला का पत्र जिसने हाल ही में प्रभुपाद की कुछ पुस्तकें प्रदान प्राप्त की थी, जुलाई के बीबीटी समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ। पत्र TWA की लेखन सामग्री पर लिखा गया। TWA क्या होगा? TWA ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइंस हो सकता है। तो उसमें क्या लिखा हुआ था? ट्रांस वर्ल्ड एयरवेज। उसकी लेखन सामग्री में लिखा गया ट्रांस वर्ल्ड एयरवेज। ओके। सैन फ्रांसिस्को हवाई अड्डे पर लंदन के लिए मेरे प्रस्थान के पूर्व आपके एक अनुयायी ने कृष्ण पुस्तक मुझे दी थी। मैंने अपने आप को इतना प्रसन्न एवं प्राधिकृत अथवा सम्मानित कभी नहीं अनुभव किया। वो माता जी क्या कह रही हैं? कृष्ण पुस्तक प्राप्त करके वो क्या लग रहा है? सम्मानित, इतना बड़ा आदर, और मैं इतनी प्रसन्न कभी नहीं हुई। मैं ऐसे भौतिकवादी चूहा दौड़ से उब गई हूँ, रैट रेस, ये हिंदी में ऐसा लग रहा है कि एक मटेरियलिस्टिक रैट रेस से मैं बोर हो गई हूँ। मैं भौतिक समानता और दौड़ धूप से रहित उच्च प्रकार का जीवन चाहती हूँ। लंदन से वापसी में ये माता जी जा रही थी सैन फ्रांसिस्को से लंदन, और सैन फ्रांसिस्को हवाई अड्डे पे किसी भक्तों को कृष्णा पुस्तक दे। अभी लंदन से जब वापस जा रही हैं, लंदन से वापसी में उस महिला ने शिकागो हवाई अड्डे पर राजविद्या नामक एक अन्य पुस्तक खरीदी जहां भी जाने उनके भक्त मिल रहे हैं, और अधिक सहायता के लिए याचना की। अंत में उसने लिखा, यह सुंदर है, ये पुस्तक भी उनको सुंदर लगे। तो इस ढंग से बहुत जोर शोर से प्रचार हो रहा था। अब देखते हैं कि किस ढंग से वो तरह तरह की विधियां अपना रहे थे प्रचार को बढ़ाने के लिए। ये भी बहुत रुचिकर है। त्रिपुरारी जो जो यात्रा करके संकीर्तन की अपनी विधि सिखाता गया, है ना। लॉस एंजलिस से त्रिपुरारी प्रभु जाते थे, दूसरे सेंटर्स में जाकर पुस्तक वितरण का ज्ञान देते थे, तकनीकें सिखाते थे, है ना। त्यों त्यों अधिकाधिक भक्त उसके उदाहरण का अनुगमन करने लगे। सही है, सबको नया टेक्निक सिखा दिया, है ना। जैसे हम लोग भी गीता मैराथन के समय अलग अलग भक्त रिक्शा में जाते हैं और सबको बताते हैं कि ऐसे बोलिए, ऐसे प्रेजेंट कीजिए अपने आप को, ये दिखाइए, ये श्लोक दिखाइए, है ना, हम आपके लिए प्रिंट करवा देंगे, नई नई टेक्निक सिखाते हैं, है ना। तो ऐसे वो सबको सिखा रहे हैं और उनका अनुधारण का अनुगमन कर लगे। और पुस्तक वितरण के समय विघ और परंपरागत वस्त्र धारण करने लगे। जो भक्त थे अब विघ डाल के आते थे और धोती कुर्ता में पैंट शर्ट या कुछ और डाल के जाते थे। इस तरह के पहनावे से उनका लोगों तक पहुंचना पहले से आसान हो गया और पुस्तक वितरण की उनकी क्षमता में वृद्धि हो गई, बढ़ गया। किंतु कुछ भक्तों को ऐसा पहनावा पसंद नहीं आया। सितंबर 1973 में एक दिन बंबई में जुहू सागर तट पर श्रील प्रभुपाद के प्रातःकालीन भ्रमण के समय कुछ सन्यासी भक्तों ने यह मामला उनके सामने रखा। प्रभुपाद ने जुहू बीच पर टहलते हुए कुछ भद्रजनों की ओर संकेत किया, जो भक्तों को सदा हाथ जोड़कर हरे कृष्णा कहते हुए सम्मान देते थे। एक सच्चे वैष्णव का यही लक्षण है, श्रील प्रभुपाद ने कहा। जो कोई भी उन्हें देखता है वह तुरंत कृष्ण के बारे में सोचने लगता है। अतएव भक्तों को सुस्पष्ट रूप से वैष्णव लक्षणों जैसे तिलक, शिखा तथा गले में माला को धारण करना चाहिए, जिससे लोग तुरंत जान जाए कि ये हरे कृष्णा लोग हैं। जुहू में टहले थे प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक में, तो देखते थे कुछ भी जो सज्जन व्यक्ति होते थे भक्तों को देखकर हाथ जोड़ते थे, तो प्रभुपाद उनकी तारीफ कर रहे थे। तो ये बात चल रही थी, प्रभुपाद कह रहे थे कि हर भक्त को ऐसे सुसज्जित रहना चाहिए, तिलक, कंठी और सुंदर शिखा। तो तभी एक सन्यासी ने टिप्पणी की कि अमेरिका में अब पुस्तक वितरण के लिए भक्त विग पहनते हैं और हिप्पियों जैसी वेशभूषा धारण करते हैं। वे अपने लोगों को ऐसा नहीं करने देता, क्योंकि उसने सोचा कि इससे तो अपना उद्देश्य ही विजित हो जाता है, यदि लोग यह भी ना जान सकें कि ये एक भक्त से बात कर रहे हैं। तो सन्यासी ने कहा कि ये कौन सा तरीका है, विग डाल लो, हिप्पी बन जाओ और दूसरे लोगों के पास जाओ, उनको पता ही नहीं चलेगा कि हम हरे कृष्णा से हैं, है ना, कि एक भक्त से बात कर रहे हैं। निष्कर्षता उसने कहा कि यदि कोई भक्त पुस्तक वितरण करना चाहता है तो कृष्ण उस भक्त की सहायता ऐसे स्थान पाने में करेंगे जहां वह अपना वेश बदले बिना अपना कार्य कर सके। तो यह सन्यासी का मत था कि भक्तों को अपनी वेशभूषा नहीं बदलनी चाहिए। प्रभुपाद अन्य लोगों का मत जानने के लिए उनकी ओर उन्मुख हुए। प्रभुपाद के साथ और उनके शिष्य थे। प्रभुपाद बोला, आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों की क्या राय है, बदलना चाहिए नहीं बदलना चाहिए वेशभूषा, हैं? देख लेते हैं कितने लोग बोलते हैं नहीं बदलना चाहिए, कितने लोग हैं बदलना चाहिए, एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर कृष्णा। चलो अब देखते हैं प्रभुपाद क्या निर्णय देते हैं। तो प्रभुपाद ने सबसे राय पूछी। एक भक्त ने कहा कि अमेरिका में भक्तों को वेश बदलने का कारण यह है कि अन्यथा कुछ स्थानों में उन्हें पुस्तक वितरण की अनुमति नहीं मिलेगी। प्रभुपाद ने लोगों का मत सुना और तब अपना निर्णय दिया। यह वेश परिवर्तन तुरंत बंद कर देना चाहिए। हम किसी भी परिस्थिति में अपने मानदंड का बलिदान नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, हमें कड़ाई से अपने सिद्धांतों का पालन करना है। इस तरह लंबे बाल रखना और कर्मी पहनावे पहना एक बार फिर हिप्पी बनने की प्रवृत्ति का द्योतक है। क्योंकि पहले आप हिप्पी थे इसलिए यह प्रवृत्ति अब भी मौजूद है, इसलिए इसे बंद कर देना चाहिए। आगे सुनिए। मंदिर वापस जाते हुए प्रभुपाद ने देखा कि एक गरीब आदमी सड़क के किनारे खुले में मल त्याग कर रहा था। भारत में कॉमन है यह दृश्य। प्रभुपाद ने कहा, जनमत के बावजूद वह अपना मानदंड नहीं बदल रहा है। क्या हम अपना मानदंड उसी कड़ाई के साथ नहीं बनाए रख सकते? जो ये व्यक्ति इतना डीट है तो हम डीट नहीं हो सकते? जैसे अमेरिका के लोग अपने मानदंड को बनाए रख रहे हैं, अमेरिका के लोग अपना मानदंड बनाए रख रहे हैं, ये व्यक्ति अपना मानदंड बनाए रख रहा है जो खुले में मल त्याग रहा है, तो हम अपने मानदंड में क्यों कंप्रोमाइज करें? हमें भी अपना मानदंड बनाए रखना चाहिए। प्रभुपाद के सचिव तमाल कृष्ण गोस्वामी ने एक पत्र का प्रारूप बनाया और उस पर अपने हस्ताक्षर किए, और प्रभुपाद ने भी एक पंक्ति पर हस्ताक्षर किए जिस पर अंकित था स्वीकृत। पत्र में लिखा था कि सभी संकीर्तन भक्तों को सदा तिलक लगाना चाहिए, धोती और गले में माला पहननी चाहिए और सर पे शिखा रखनी चाहिए, और पुस्तक वितरण में सहायता के लिए उन्हें छद्य वेश नहीं करनी पर नहीं वरन कृष्ण पर निर्भर रहना चाहिए। हिप्पियों के ड्रेस पर विग लगा के इस पे निर्भर नहीं रहना, किस पे निर्भर रहना? कृष्ण की कृपा पर, कृष्ण पर निर्भर रहना है। किंतु पत्र में अंत में एक पुनश्च लिखा था। पुनश्च क्या होगा? रिमाइंडर होगा ना, रिमाइंडर। प्रभुपाद ने उपर्युक्त का निरीक्षण करने के बाद जोड़ा था, यदि भक्त चाहें तो वे कोट पैंट पहन सकते हैं, लेकिन तिलक शिखा और माला ये चीजें जरूरी होनी चाहिए। तो ये असली निर्णय है कि हम जहाँ भी जाएं पुस्तक वितरण के लिए, अच्छा है कि हम धोती कुर्ता में जाएं, पूरे वैष्णव वेशभूषा में जाएं, लेकिन कहीं जगह अगर इसकी अनुमति नहीं मिलती तो हम कोट पैंट डाल सकते हैं, लेकिन साथ में क्या आवश्यक है? तिलक शिखा और कंठी वाला। कई बार हम जैसे हम कॉलेज पिचिंग में भी जाते हैं, तो कॉलेज पिचिंग में भी हम लोग पैंट शर्ट में जाते हैं, या कई बार कॉर्पोरेट पिचिंग में भी जाते हैं तो हम कोट पैंट डाल के जाते हैं, लेकिन हम तिलक लगाए रखते हैं। शिखा भी होती है और कंठी भी होती है। तो कई बार जो वहाँ के लोग होते हैं बड़े उत्सुक हो जाते हैं, बड़ा यूनिक कॉम्बिनेशन है। हम जाते थे, अरे इनका क्या है, कैसे लोग हैं, क्या कुछ अजीब से ही हैं, बढ़िया सा कोट पैंट डाला हुआ है, तिलक इतना लंबा और ऐसी शिखा भी रखी हुई है। एक व्यक्ति बोला मेरे, अब रुक्मिनिकेशन है, आपको लगता है साउथ इंडिया से होंगे, बोले आप तो ऐसा तिलक लगाते हैं, ऐसे कैसे लगाए हो? वो सोच रहे कि कोई साउथ इंडियन है, तो बस अजीब सा ही लगता है, लेकिन फिर भी मैसेज चला जाता है, क्योंकि ये बहुत ही शुद्धकारी है। तिलक का दर्शन करते हैं, कंठी माला देखते हैं। तो अगर हम ऐसे कई जगह जा रहे हैं जहाँ पे परमिशन नहीं है, तो हमें उन लोग थोड़ा से अजीब सा महसूस करेंगे धोती कुर्ता में हमें देख के, तो हम पैंट शर्ट डाल सकते हैं। श्रीला प्रभुपाद पहले भी अपने विभिन्न पत्रों में इस विषय पर लिख चुके थे। कनाडा में जगदीश के पत्र का उत्तर देते हुए उन्होंने लिखा था कि पश्चिमी पोशाक पहनने और हैट या विग लगाने में कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया था, कृष्णा भानामृत आंदोलन को सफल बनाने के लिए जो भी अनुकूल स्थिति हो उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। पुस्तक वितरण में हमें कभी कभी ऐसे साधन भी अपनाने चाहिए। किंतु फरवरी 1973 में उन्होंने रूपानुगा को लिखा था कि वे नहीं चाहते थे कि उनके भक्त हिप्पियों की वेशभूषा धारण करें। तो प्रभुपाद जी का पत्र है रूपानुगा जी को, हमें इसे बंद कर देना चाहिए, हमें किसी को मौका नहीं देना चाहिए कि वह हमें हिप्पी कहे, किंतु भक्त मेरे साहित्य को विशेष परिस्थितियों में वितरित करने के लिए महिलाओं और भद्र पुरुषों की तरह सामान्य वेशभूषा पहन सकते हैं। जहां भी कहीं कहीं व्यक्ति होंगे वहां मतभेद जरूर होगा। श्रीला प्रभुपाद चाहते थे कि व्यवस्था संबंधी विवरण उनके सामने ना आए। उनके जीबीसी के लोगों को चाहिए कि वे आपस में विचार विमर्श कर लें और तब अपने निष्कर्ष प्रभुपाद के सामने अंतिम निर्णय के लिए प्रस्तुत करें। प्रभुपाद ने लिखा था, इससे मैं श्रीमद् भागवतम के अपने अनुवाद पर स्वतंत्रता से ध्यान केंद्रित कर सकूंगा। प्रभुपाद चाहते थे कि मैनेजमेंट के पछड़े मेरे में मत डालो। उनके जीबीसी थे, बोलो आपस में चर्चा करो और अंतिम निर्णय के लिए मेरे पास मुद्दा लेके आओ। और प्रभुपाद अपना समय किसमें लगाएं? श्रीमद् भागवतम के अनुवाद करने में। प्रभुपाद का भारत से पत्र करंधर को लॉस एंजलिस में मिला। करंधर प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, जो कि वहां के जीबीसी थे। किंतु यह घोषणा करने के पहले कि पश्चिमी वेशभूषा में सभी संकीर्तन बंद कर दिए जाएं, वह चाहता था कि प्रभुपाद उसका पक्ष भी सुन लें। ठीक है, जब करंधर जी को यह पत्र मिला कि पश्चिमी वेशभूषा डाल के पुस्तक वितरण नहीं करना, तो उसने बोला, सोचा कि मैं प्रभुपाद को अपना पक्ष बताना चाहता हूँ। पुस्तक वितरण के समय भक्तों के पश्चिमी वेशभूषा पहनने के लाभों के संबंध में उसने एक विस्तृत रिपोर्ट दी। तो देखिए, ये गुरु शिष्य के संबंध हैं। कई बार हम जब गुरु से आदेश आए तो बोले गुरु के आदेश आ गए, अब तो हमें बस करना है। तो शिष्य के पास ये पूरी स्वतंत्रता है कि वो अपने मत को प्रस्तुत कर सकता है। और करंदर जी ने पूरी एक विस्तृत रिपोर्ट बनाई कि पाश्चात्य वेशभूषा से हमें पुस्तक वितरण में क्या क्या लाभ हो रहे हैं, है ना। उनका निष्कर्ष था कि जिस चीज पर प्रभुपाद को मुख्य आपत्ति मालूम होती थी वह थी भक्तों की हिप्पियों जैसी असम्मानजनक वेशभूषा। उसने प्रभुपाद को सूचित किया कि पुस्तक वितरक अब वास्तव में साफ सुथरे, सजे धजे और आकर्षक दिखते हैं। उसने कहा कि यदि पुस्तक वितरों पर जनता के बीच में केवल मुंडे सिर और धोती पहनकर जाने का प्रतिबंध लगाया जाता है तो पुस्तक वितरण की संख्या करीब 2/3 कम हो जाएगी। उसने लिखा, यदि कहीं अतिशयता हुई और या नियमों का ठीक से पालन नहीं हुआ है तो उन्हें ठीक करना चाहिए, बजाय इसके कि पूरा कार्यक्रम छोड़ दिया जाए। तो करंदर बहू ने बोला, कहीं पे एक्सट्रीम चले गए लोग, कुछ नियमों को तोड़ दिया, तो उसको ठीक करना चाहिए। आप एक जनरल इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि कोई वेस्टर्न वेशभूषा नहीं, ये ठीक नहीं है, इससे हमारा पुस्तक वितरण कितना कम हो जाएगा, 2/3 कम हो जाएगा। इस बार प्रभुपाद ने पाश्चात्य पहनावे के विषय में लिखा, तो उन्होंने अपना फीडबैक प्रभुपाद को दिया। फिर प्रभुपाद का दोबारा पत्र आया। उस समय ये कम्युनिकेशन का तरीका होता था चिट्ठी लिखना, आजकल तो तुरंत ईमेल करो, एसएमएस करो, व्हाट्सएप में भेजो, सब हो गया। अब देखो उस समय में क्या कम्युनिकेशन करते थे प्रभुपाद, है ना, इतने व्यस्त दिनचर्या में प्रभुपाद चिट्ठी डिक्टेट करते थे, चिट्ठी जाती थी। तो प्रभुपाद का चिट्ठी आया, हाँ तुम पहले की तरह पुस्तक वितरण जारी रख सकते हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं समझता था कि मेरे लोग हिप्पियों की तरह होते जा रहे हैं, किंतु अब तुम्हारे पत्र से मालूम हुआ है कि बात ऐसी नहीं है, इसलिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हमारा मुख्य उद्देश्य पुस्तक वितरण है और समस्त संसार से जो समाचार मुझे मिल रहे हैं उससे पता लगता है कि प्रगति बहुत उत्साहवर्धक है। ठीक है, तो आप में से किसी को कोई भ्रम तो कंफ्यूजन तो नहीं है कि पुस्तक वितरण के समय हमें वेशभूषा बदलनी है कि नहीं बदलनी? कोई कंफ्यूजन है किसी को क्या करना है? प्रभुपाद का क्या संदेश है, क्या कर सकते हैं पुस्तक वितरण के समय, क्या हम बदल सकते हैं अपनी वेशभूषा, कैसे बदल सकते हैं, कौन बताएगा? हाँ एक मिनट बताइए। कैसे मालूम चलेगा? तिलक शिखा और कंठी होने चाहिए और बहुत ही सभ्य वेशभूषा होनी चाहिए, कोई इंडिसेंट या अजीब सी कोई वेशभूषा नहीं होनी चाहिए, है ना। और कोई ऐड करना चाहेगा इसमें? हाँ यस महाराज,
वर्तमान युग में परिस्थिति बदल चुकी है, हर चीज के लिए देशकाल परिस्थिति होती है। अभी वर्तमान स्थिति में जो अधिकतर भक्त हैं वह अपने धोती कुर्ता नहीं धारण करते परंतु शर्ट पैंट धारण करते हैं। अभी हम इस कमरे में ही देखें तो अधिकतर भक्तों की मात्रा ऐसी है जो शर्ट पैंट में है।
So, obviously Prabhupada changed his opinion about using street clothes for book distribution. In other words, he became in favor of it. When the devotees convinced him that that would make book distribution easier.
तो उस समय श्रील प्रभुपाद ने अपने मत को बदला और ये अनुमति दी कि भक्त अपने शर्ट पैंट पहन के पुस्तक वितरण करने जा सके।
But the report that he had been given that they were dressed as hippies was completely false. That was some fanatical sannyasis gave the no. I'm serious. They're you. Sannyasis were very fanatical later. Many of them fell down.
तो उस समय जो प्रभुपाद को रिपोर्ट दी कि जो भक्त हैं वो हिप्पी की तरह ड्रेस कर रहे हैं, तो ये गलत रिपोर्ट थी।
The wigs they were wearing were not hippie wigs. That was completely false report.
तो वे जो विग लगाते थे तो वह हिप्पियों का विग नहीं होता था।
When they would put on the wig about his length of his hair. This Prabhu with the striped shirt. Yes, you. When they would wear a wig, they would look like...
खड़े हो सकते हैं, खड़े हो जाए.
They would look like him. No, this Prabhu. They would look like you when they would wear... No, this is, wait, you want to show everybody? This is what his, look at his hair. That's what they used to look like when they put on a wig.
तो इन प्रभु के जैसे बाल हैं, तो इसी साइज का विग होता था.
So then the next part here is some devotees and their over eagerness to distribute books started telling lies. So he Prabhupada started getting these reports.
तो अब इसका हम दूसरा साइड देखते हैं. जो कई भक्त थे वो पुस्तक वितरण करने के लिए उनकी इच्छा इतनी जागृत हो गई कि वह लोगों को झूठ बोलना उन्होंने शुरू कर दिया.
They would say things like, "We're collecting money for starving children in Africa." It was, or they might say, "Starving children in India."
तो वे लोगों के पास जाते थे और उन्हें कहते थे कि जो अफ्रीका और भारत में भूखे बच्चे हैं, हम उनके लिए धन इकट्ठा कर रहे हैं.
That's why in the letter to my godbrother Sri Govinda Prabhu here, he was telling Prabhupada was emphasizing, learn how to distribute the books without telling lies. He was very adamant on this point. Don't tell lies to distribute the books. So the movement got into a lot of trouble over lie telling. You wouldn't believe the things devotees used to do.
तो महाराज के गुरु भाई गोविंद को श्रीला प्रभुपाद जी ने पत्र लिखा और बताया कि आपको ये कला जाननी चाहिए कि किस प्रकार बिना झूठ बोले या बिना उस व्यक्ति को डिस्टर्ब किए आप उस तक पुस्तक पहुंचा सकें. और प्रभुपाद इस पॉइंट को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट थे.
But in the seventh canto of Srimad Bhagavatam, there's a very significant purport by Prabhupada.
श्रीमद् भागवतम सातवें स्कंद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तात्पर्य दिया है श्रीला प्रभुपाद ने.
I don't know what year those purports were written, but by that time the situation had stabilized and the temple presidents and sannyasis had objected to street clothes, they had calmed down.
To mujhe ye yaad nahi hai ki kaun se varsh mein wo tatparya likha gaya, parantu us samay tak sthiti sambhali ja chuki thi.
The seventh canto of course is the story of Prahlad Maharaj.
Jo saatva skand hai wo Prahlad Maharaj ki leela ka varnan karta hai.
Sanda and Amarga, the teachers, they were like freaked out. They were completely bewildered and confused.
The Sand aur Amar jo Prahlad ke shikshak the ve puri tarah se ghabra gaye the ki kya ho raha hai.
Or they were trying to save their reputation for so they couldn't be right.
Aur ve ab kisi tarah se apna samman bachana chahte the ki Hiranyakashipu unka vadh na kar de.
They said, "I don't know how." They would say to Hiranyakashipu, "I don't know how it's happened. Some devotees of Vishnu have infiltrated into our camp. I don't know how it's happened. Please, it's not our fault."
तो उनके शिक्षक इस प्रकार हिरण्यकशिपु से माफी मांगते थे कि हमें नहीं पता कि कैसे ये हो गया है. कौन वैष्णव भक्त वेशभूषा बदलकर हमारे इस कैंप में आ गया है?
In the purport, Srila Prabhupada writes, "Yes, sometimes our devotees, they also will make disguises and go into the public for book distribution."
और इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि हाँ, कभी कभी हमारे भक्त भी इस प्रकार से अपनी वेशभूषा बदलकर जन सामान्य के बीच में जाते हैं पुस्तक वितरण के लिए.
Same time, we should not throw out these very important statements by Prabhupada about Vaishnav dress here, because now in ISKCON it's becoming a controversy. In other words, people should be able to sit on the Vyasasana and give classes and karmic goals. I mean, it's getting, that's pretty rare. But the idea is that Prabhupada is emphasizing the importance of Vaishnav Tilak and Vaishnav dress, that people are getting liberated just by seeing this. So that we should not forget that part of it while enthusiastically doing distribution and street clothes.
हमें अपने नॉर्मल शर्ट पैंट वाले कपड़ों में उत्साह पूर्वक पुस्तक वितरण करने के साथ साथ जो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने वैष्णव वेशभूषा पर महत्वपूर्ण जोर दिया है, इस आज्ञा को भी नहीं भूलना चाहिए.
Okay, that's good.
तो बहुत धन्यवाद महाराज जी का. His Holiness भक्ति माधवन साईं महाराज के तो दर्शन का समय हो गया है. आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की प्रभुपाद लीलामृत की चंदन यात्रा की मौनी एकादशी की विदाई गौर प्रेमानंदे.